इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा। इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुख्तलिफ मौजूआत पर हमारी एक दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू होती रहती है। अभी चंद दिन पहले भी हमारे इन्हीं अहबाब के साथ कई मौजूआत पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी रही। तो अभी एक हमारा टॉपिक चल रहा था मुजद्दिद के हवाले से, क्योंकि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है और इसमें आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर्रहमान के हवाले से काफ़ी कलाम होता है और इस महीने में लफ्ज़ मुजद्दिद और इसके बारे में डिटेल के एतबार से बात होती है। तो हमारी आपस में गुफ्तगू हुई कि हम इसी मौजू पर कुछ कलाम करते हैं, कुछ सवालात करते हैं और इस हवाले से कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि मुजद्दिद के हवाले से इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो कुछ जो है जो सवालात होंगे इंशाल्लाह उनके जवाब दिए जाएंगे।
मुफ्ती साहब, अक्सर ये आप जैसे आपने फरमाया कि आला हजरत का जो महीना चल रहा है इसमें लोग मुजद्दिद के वर्ड्स वगैरह इस तरह के अल्फाज यूज़ हो रहे होते हैं और उनके आगे लगाया भी जाता है मेरे ख्याल से, तो पहले तो ये बताया जाए कि मुजद्दिद कौन होता है, किसे कहते हैं, और कुरान और हदीस जब मौजूद है तो मुजद्दिद की मतलब ज़रूरत क्या है, और इसकी की मिसाल वाज़े करें तो ये आवाम को समझ में आए कि ये क्या है।
मुजद्दिद कौन होता है, क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है? तो देखिए, अर्थ ये है कि मुजद्दिद कोई जुदा गाना कोई ऐसा उहदा नहीं है और या कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि जिसका कोई बुनियादी तौर पे हमारे कोई ईमानियात के साथ ताल्लुक है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। असल क्या है, देखिए, हमारा दीन इस्लाम है, इस्लाम की तबलीग होनी चाहिए, इस्लाम की तरवीज होनी चाहिए, इस्लाम की इशात होनी चाहिए। अब वो तरवीजो इशात कोई तो करेगा, वो जो तरवीजो इशात करने वाले हैं उनको मुबल्लिगीन भी कहा जाता है, उनको मुस्लिहीन भी कहा जाता है। अब जिसका जितना बड़ा मर्तबा होता है या जो जितने वसी पैमाने पर दीन का काम करता है तो उसी एतबार से उसको टाइटल दे दिया जाता है। लेकिन चूंकि मुजद्दिद का वो टाइटल है कि जो एक हदीस मुबारक के अंदर बयान कर दिया गया, तो लिहाजा इस वजह से खिदमत दीन के एक बहुत बड़े नाम को मुजद्दिद के लफ्ज़ के साथ ताबीर कर दिया जाता है। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत क्या है? तो देखिए, ये तो हमारे लिए बड़ा वाज़े है कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो तमाम औलाद आदम को फरमाया कि भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, रहनुमाई आएगी, तो तुम में जो इसकी पैरवी करेगा तो वो नजात पा जाएगा और जो नहीं पैरवी करेगा वो खसारा उठाएगा। तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू फरमाया। अब अम्बिया अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला है वो यूं चलता था कि एक नबी अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करते थे, उसकी तबलीग के लिए। जब वो दुनिया से चले जाते तो अल्लाह ताला दूसरा नबी भेज देता। एक ही जमाने में बहुत से इलाकों में बहुत से नबी मौजूद होते थे। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद ये नहीं है कि लोगों में बुराइयां फैले तो कोई नया नबी आ जाए जैसे पहले होता था। तो अब जो कुछ भी होना है वो इस उम्मत में ही होना है। तो खत्मे नबूवत के बाद और अल्लाह की आखिरी किताब के बाद अब जो सिलसिला है वो इस उम्मत ने ही इस्लाह का, फलाह का, इशात दीन का, इशात इस्लाम का करना है। तो लिहाजा उसको किसी ने तसनीफ की सूरत में किया, किसी ने तकरीर की सूरत में किया, किसी ने खानकाही निज़ाम के जरिए किया, किसी ने मदरसा बनाने के जरिए किया। तो यूं मुख्तलिफ हजरात ने मुख्तलिफ शोबे चुन लिए, कोई मुफस्सिर बन गया, कोई मुहद्दिस बन गया, कोई फकीह बन गया। तो ये एक खास खास फील्ड के अंदर काम थे। मुहद्दिस हदीस में काम करता है, मुफस्सिर तफसीर में काम करता है, लेकिन मुजद्दिद जो है उसका जो काम है वो ओवरऑल पूरी उम्मत के एतबार से होता है।
ओवरऑल यानी कि वर्ल्ड वाइड आप कहें उसे,
वर्ल्ड वाइड कहना तो एक दूसरी बात हो जाती है। यूं कह लें कि उसका काम ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी खिदमत वो सर अंजाम देता है, यानी उसका काम ये नहीं है कि वो बहुत महदूद सा हो, महदूद जगह के लिए हो, महदूद अफराद के लिए हो, नहीं। या तो उसके काम की जो वसात है वो बहुत बड़ी होगी, जो उसने इतने बड़े जमाने को मुतासिर किया होगा और उनमें काम किया होगा, या उसने किसी बहुत बड़े फितने का जवाब दिया होगा और उस फितने को हल किया होगा। तो असल यूं कह लें कि फितनों के खात्मे के लिए, लोगों की इल्मी अमली इसलाह के लिए, ये वो बुनियादी चीजें होती हैं कि जिनके लिए मुजद्दिद आता है। तो उसे हदीस मुबारक के अंदर बयान किया गया कि इन अल्लाह यबअथु अला रासि कुल्लि मियाति सानातिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला हर 100 साल के इख्तिताम पर ऐसे बंदे भेजेगा या ऐसा बंदा भेजेगा जो उनके लिए उनके दीन को नया कर देंगे, उस पे आने वाली गर्दो गुबार को हटा के जो असल दीन है वो निखार कर उनके सामने पेश कर देंगे। तो ये है मुजद्दिद का कॉन्सेप्ट।
मेरे जहन में आप ही के जवाब से 3-4 और सवाल आए। अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं दीन की खिदमत जो जो कर रहा है, यानी कि अगर इस वक्त हम इस जमाने में देखा जाए तो मेरे दिमाग में 2-4 और नाम जो है वो पॉप अप हुए हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम अमीर अहले सुन्नत का नाम देते, इसी तरह अगर पाको हिंद में अगर आप देख लें तो कोई और भी होंगे इसी तरह के, तो क्या वो अलग अलग मुजद्दिद होंगे या इंडिविजुअली एक ही मुजद्दिद होता है?
एक ही होना जरूरी नहीं है कोई
जी।
देखिए असर है दीन की तजदीद यानी दीन की खिदमत का बहुत बड़ा काम। अब दुनिया इतनी वसी है कि शायद एक बंदे का काम पूरी दुनिया में फैल जाए और पूरी दुनिया को मुतासिर कर दे, ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एक ही वक्त में ये भी हो सकता है कि अरब दुनिया के फितने कुछ और हो, अजम के फितने कुछ और हो, अच्छा यूरोप के अंदर कुछ और ही चल रहा हो। तो अब क्या होगा कि अल्लाह ताला हर इलाके के अंदर ऐसे अफराद को खड़ा कर देता है कि जो वहां पर काम करते हैं। अब उसकी एक मिसाल ले लें कि जैसे आला हजरत अली रहमा को हम ये कहते हैं कि वो 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं, जो पिछली सदी गुजरी है उसके मुजद्दिद हैं। लेकिन आला हजरत का जितना भी काम था वो सारे का सारा हिंदुस्तान की हद तक था। हिंदुस्तान अगरचे पूरा ये बर्रे सगीर था, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सब मिलके एक सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा एरिया बनता है, लेकिन अरब दुनिया के अंदर आला हजरत का नाम जरूर गया और आपकी कुछ तसनीफात भी गई, आपने वहां पर कुछ तहकीकात भी पेश की। लेकिन जिस वसात के ऊपर मुजद्दिद का काम होता है आला हजरत का, उतना काम आपके जमाने में वहां नहीं पहुंचा। अब उस जमाने के अंदर इसी तरह के फितरों का जवाब वहां पर अलामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह कर रहे थे। उन्होंने भी 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी इश्क रसूल को फरोग दिया, उन्होंने भी फितरों का जवाब दिया, तो उन्होंने वहां के एतबार से बहुत बड़ा काम किया। तो अब वो भी मुजद्दिद, आला हजरत भी मुजद्दिद। यूं मुख्तलिफ सदियों में आपको मुख्तलिफ हस्तियां नजर आएंगी। अच्छा बात ये भी होता है कि एक ही जमाने में एक ही फितने पर 2 या इससे ज्यादा अफराद ने काम किया। जैसे 3री सदी हिजरी जो थी, 3री सदी हिजरी में इमाम अबुल हसन अशारी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैहिम, ये 2 हस्तियां, ये अकीदे के अंदर 2 इमाम हैं और ये एक ही सदी के हैं। दोनों ने अकीदे पर काम किया, दोनों ने उस जमाने के जो गुमराह फिरके थे मोतजिला और दीगर, इनका रद्द किया, इनके इतराजात और सवालात के जवाब दिए। तो अब 2 हस्तियां और दोनों ने एक ही मौजू पर काम किया और बहुत बड़ा काम किया। आला हजरत के जमाने में इश्क रसूल का मामला और गुस्ताखों के जवाब, तो आला हजरत ने भी वही काम किया और अलामा नबहानी अली रहमा ने भी वही काम किया। अच्छा फिर ये भी पॉसिबल है कि एक जमाने में फितने मुख्तलिफ हों, तो एक ने एक फितने का जवाब दिया, दूसरे ने दूसरे फितने का जवाब दिया। जैसे आला हजरत के जमाने में एक दूसरा फितने जो थे, आला हजरत ने भी उस पर काम किया, लेकिन जो दूसरा काम है वो ज्यादा बड़ा है। मिसाल के तौर पे आला हजरत के जमाने में फितने कादियानियत था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो बजाते खुद मौजूद था, ठीक। अच्छा अब उसके रद्द पर और उसकी तरदीद पर आला हजरत ने किताबें लिखी, आपकी औलाद ने किताबें लिखी, आपके शागिर्दों ने किताबें लिखी, मुनादर हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन उसी जमाने में पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने जितना शद्दोमद के साथ और जोर शोर के साथ और यूं कह ले कि इफेक्टिवली उस फितने पर काम किया और उसका रद्द किया है, वो दूसरों ने नहीं किया। वो बकायदा उसको मिर्जा को चैलेंज करते थे, तो उसके लिए मुनादरे के लिए पहुंचे, उसके रद्द में किताबें लिखी, उसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर गए, अपने खुलाफा को उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर भेजा। तो अब देखिए, एक ही फितने पे एक हद तक दूसरों ने भी काम किया, लेकिन जो बहुत बड़ा काम है वो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने किया। तो यूं मुजद्दिद एक वक्त में सिर्फ एक हो, ये जरूरी नहीं,
ये जरूरी।
बहुत सारे हो सकते हैं और उनके कामों की नौइयतें एक भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ भी हो सकती
हैं। अच्छा, इंडिविजुअली उनको अपना पर्सनल पता होता कि यार आया कि मैं मुजद्दिद हूं,
ये पता होना जरूरी नहीं है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जैसे किसी पर जो है ना कोई इल्हाम होता है कि अंता मुजद्दिद, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि क्राइम से किसी को अपने बारे में ये अंदाजा हो कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब के लिए मुंतखब किया है, तो ये हो सकता है कि किसी जमाने में कोई बहुत बड़े पैमाने पे फितना फैला हो और उसके रद में किसी ने बहुत बड़ा काम किया और लोग भी उसको कहते हैं कि भाई ये तो तजदीदी काम है, ये तो मुजद्दिद का काम कर दिया आपने, और उसे भी ये समझ आता है कि इतने बड़े फोरम पे और इतने बड़े लेवल पर जो काम है वो मेरे अलावा किसी ने नहीं किया, तो मेरा गुमान ये है कि मैं मुजद्दिद हूँ। तो मुजद्दिद होने का जो मामला है ना, ये गुमान के ऊपर है, इसको यकीन के साथ नहीं जोड़ सकते कि यकीनी तौर पर मुजद्दिद है। हाँ, बाद वाले फिर कह के शोहरत ज्यादा हो जाती है, तो यूं है कि भाई यही मुजद्दिद है।
मुफ्ती साहब, आपने हमें मुजद्दिद के हवाले से काफ़ी मालूमात दी और बताया भी है कि चंद एक मुजद्दिद जो इस दुनिया में तशरीफ यानी कि जिन्होंने काम किया दीन के हवाले से, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि तारीख के अंदर कौन कौन से मुजद्दिद हैं जो आए हैं, उनके नाम अगर वजाहत के साथ हमें बता दें।
देखिए, इसमें हकीकत हाल तो वही है जो मैंने अर्ज किया है कि बितायीन जो है ना कि भाई फलां सदी में ये मुजद्दिद आए, ये को हरफ़ आखिर बात नहीं हो सकती। हाँ, उलमा ने मुख्तलिफ नाम लिए हैं, तो पहली सदी के एतबार से कुछ और है, दूसरी तीसरी के एतबार से कुछ और है। तो अब हर हर सदी का कौन था, तो वो तो थोड़ा सा किताबों में लिखा देख लें। वैसे जो मारूफ नाम है, जैसे वो ये है कि पहली सदी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला थे, दूसरी सदी के अंदर इमाम शाफई थे, तीसरी के अंदर इमाम अबू मंसूर मातुरीदी और इमाम अबुल हसन अशारी थे, और चौथी के अंदर भी इसी तरह दो हस्तियों के नाम हैं, पांचवी में इमाम गजाली आ जाते हैं, छठे के अंदर इमाम राजी आ जाते हैं, सातवें के अंदर जो है वो और दो बड़े आइमाए इल्मुल कलाम हैं, अकीदे के इमाम हैं, वो आ जाते हैं, फिर उसके बाद अलामा सियूती हैं, अलामा सखावी हैं, फिर उसके बाद मुजद्दिद रफ़सानी हैं, शेख अब्दुल हक मोहद्दिद देलवी हैं, मुल्ला अली कारी हैं, फिर उसके बाद ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर हैं, फिर उसके बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी हैं, फिर आला हजरत हैं। तो ये एक यूँ कह लें कि मारूफ नाम जो है ना मैंने आपको अर्ज कर दिए, तो मोस्टली इनके हवाले से कहा जाता है ये मुजद्दिद हैं, लेकिन इनके अलावा और भी हो सकते हैं।
अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे आपने फरमाया कि मुजद्दिद जो होता है, आपने कुछ नाम भी आपने गिनवाए, तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो जो आपने किस्में बताई हैं वो हैं बिल्कुल ऐसे ही, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी आया इन दिनों में कि यार मैं मुजद्दिद हूँ, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं मुजद्दिद हूँ। अच्छा, जो आपने किस्में बताई हैं, इनके लोग उनकी बात भी सुनते हैं, वो मदारिस भी बनाते हैं, वो तस्नीफ भी करते हैं, वो सारी चीज़ें वो उनमें पाई जाती हैं, और पर्सनली वो खुद ही बता रहा होता है कि यार मैं मुजद्दिद हूँ, फिर उलमाए किराम क्यों उनको कहते हैं कि यार उसका रद्द क्यों करते हैं कि मुजद्दिद नहीं।
देखिए, वैसे हिस्ट्री के एतबार से तो ऐसा कम है कि किसी ने मुजद्दिद का दावा किया हो और उस पर किसी दूसरों ने उसकी तरदीद की हो। ये हुआ है कि किसी ने मुजतहिद होने का दावा किया। मुजतहिद का एक और यानी उसकी डेफिनेशन है, मुजद्दिद की और है। तो मुजद्दिद में कम ही ऐसा हुआ है कि किसी ने मुजद्दिद होने का दावा किया या उसके बारे में कहा गया और बकिया ने उसका रद्द कर दिया हो। हाँ, ये यूं कह लें कि शायद आजकल के जमाने में ये तरकीब काफी आम है कि बहुत सारे जनाब ये मुजद्दिद वो मुजद्दिद वो मुजद्दिद, तो जितने कहने वाले होते हैं उतने रद्द पे खड़े हो जाते हैं। तो उसकी वजह देखिए, उसकी वजह होती है बाज़ुकात तो किसी के मुजद्दिद होने का रद्द जो है वो दलील की वजह से ही होता है। अब दलील क्या है? दलील ये है कि किसी के बारे में मुजद्दिद होने की बात की गई और उसका अकीदा ठीक नहीं है, तो भाई वो तो खुद फितना है, बजाय इसके कि वो उसकी सलाह करे, उसको तो पहले उसी को संभालना पड़ेगा कि भाई ये तो सही हो। और इसी तरह किसी के बारे में कहा गया ये मुजद्दिद है और उसकी दाढ़ी नहीं, या उसकी नमाज का ही वो पढ़ ली नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं ऐसे भी अफराद को जानता हूँ कि जिनके बारे में ये दावा किया जाता है, जबकि ना उनकी दाढ़ी है ना उनकी नमाजों की ऐसी कोई पाबंदी है, इवन के इल्मे दीन भी उनका बस दरमियाना सा ही है। अब उसके बारे में बोल देंगे मुजद्दिद है, तो वहां तो हर तीसरा बंदा बोलेगा भाई ये कहाँ का मुजद्दिद।
इसके कुछ पैरामीटर तो सेट होंगे ना कि यार आज कौन लोग हैं जो ये तायुन करेंगे कि ये मुजद्दिद है और इसको मान लिया जाए कि आया कि ये मुजद्दिद है।
ये यूं कह लें कि जो अहले इल्म और सालहीन यानी नेक लोग हैं और दीनदार लोग हैं, उनकी अक्सरियत इसके बारे में ये कहेगी ना कि ये मुजद्दिद है, उसको मुजद्दिद माना जाएगा। क्योंकि वरना तो जो है ना, वो हमारे यहाँ तो वैसे भी थोड़ा सा वोटिंग जमहूरियत वाला सिस्टम है ना, तो किसी के भी वोटर भी मिलकर उसको बोल दें कि ये मुजद्दिद बना दिया हमने, तो ये कोई इलेक्शन वाला तो काम है नहीं कि मिलजुल के उसको मुजद्दिद बना दें। तो इसलिए मुजद्दिद होना चूंकि दीन की फील्ड है, लिहाजा इसमें दीनदारों का ही एतबार होगा, और इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा इल्म के साथ है, तो लिहाजा इसमें अहले इल्म का एतबार होगा। तो अहले इल्म, अहले दीन, पाबंदे शरा, दीन पर अमल करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद किसी के बारे में ये कहेगी तो उसका एतबार किया जाएगा। एक तो ये है, दूसरे नंबर पर यह है कि मुजद्दिद के बारे में उलमा ने अक्सर ये शर्त लिखी है कि वो दो सदियां पाए, यानी एक सदी का इख्तिताम और दूसरी हिजरी सदी जो है उसकी इब्तिदा पाए। अब मिसाल के तौर पे कोई मिड ऑफ द सेंचुरी है, अगरचे उसने बहुत काम किए, लेकिन अगर वो पिछली सदी का इख्तिताम और अगली सदी का की इब्तिदा, अगर ये उसको जमाना नहीं मिला, तो वो जो इस्तिलाह के एतबार से मुजद्दिद है फिर वो उसको नहीं कहा जाएगा। तीसरे नंबर पर ये है कि उसका काम भी इस नौइयत का हो, यानी ये नहीं है कि किसी ने एक मदरसा बना दिया तो उसको मुजद्दिद कह दें, ऐसा नहीं, उसके काम की नौइयत बहुत बड़ी हो। जैसे ये जितने मुजद्दिदीन की बात की गई है जिनके मैंने नाम दिए, आप जरा इनकी तारीख पढ़ें, इनकी सीरत पढ़ें, आप यकीन कीजिए जैसे कहते हैं ना आंखें खुली की खुली रह जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला ने जब आए तो उस वक्त जो उससे पहले बादशाह थे, यानी सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने के बाद वाले जो थे, उन्होंने जो खराबियां पैदा की, इसी तरह अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने तो एक जो ना वो सच्चे हुक्मरान थे जो उनके बाद आए। अब उसमें तो यजीद था, उसके बाद सुलेमान, अब्दुल मलिक सुलेमान, ये लोग थे। अब इनकी वजह से जो अकरबा परवरी, जो करप्शन, जो जायदादों पे कब्जे और जो जुल्मो सितम, ये सब था। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपने 28 साल के जमाने हुकूमत में सारा कल्चर चेंज कर, सब कुछ बदल के रख दिया। ठीक है, अच्छा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह दूसरी सदी के मुजद्दिद हैं। अब इमाम शाफी जैसी हस्ती को देखें कि उन्होंने फिक्र और हदीस के अंदर और इज्तिहाद और फिकही मसाइल के अंदर इतना बड़ा काम किया कि दुनिया में करोड़ों अफराद उनके फिक्र को मानने वाले, उस पर चलने वाले। इमाम आजम का मरतबा उनसे बड़ा है, लेकिन वो जो था ना सदी का इब्तिदा और इख्तिताम, बेसिकली वो नहीं वहां पाया जाता, इसलिए उनको मुजद्दिद नहीं कहा गया। अच्छा, फिर इसके बाद आप अगर इमाम अबुल हसन अशरी, इमाम मातुरीदी की सीरत पढ़ें तो आप यकीन कीजिए कि आज के जमाने में तो लोगों को ये यकीन ही नहीं आएगा कि कोई इतना काम भी कर सकता है। इमाम अबुल हसन अशरी की किताबें हैं 12 जिल्द, 15 जिल्द, 20 जिल्द, 18 जिल्द, 16 जिल्द, 10 जिल्द, 9 जिल्द, 6 जिल्द, 4 जिल्द, यानी इतनी इतनी मोटी किताबें, और वो भी दर्जनों दर्जनों की तादाद में लिखी हुई। अच्छा, फिर आप इमाम गजाली को तो वैसे ही सारी दुनिया जानती। इमाम राजी की उसूल फिक पे और तफसीर पर किताब और इल्मुल कलाम के अंदर उनका जो काम है दुनिया जानती। इसी तरह शाह अब्दुल हक मोतीदिल भी रहमतुल्लाह अलैह, या मुजद्दिद रसानी हो गए, या आला हजरत हो गए, तो आज अलामा सूती रहमतुल्लाह। अब अलामा सूती की किताबों की तादाद गालिबन है 1100 के करीब है, 1150 के करीब किताबें लिखी थी, और उलूम की महारत और वुसत इल्मी और तबहुर इल्मी उनका देखने वाला। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक छोटा सा मदरसा बनाया था तो लिहाजा वो उसके ऊपर, उन्होंने जो इल्म की खिदमत की ना, वो यूं कह लें कि इतनी दूर दूर तक वो पहुंची उस जमाने में जब ये मोबाइल
मोबाइल और
टीवी ये वो कुछ नहीं था। तो उनके जमाने में उनकी शोहरत जो है ना वो मशरिक से मगरिब तक पहुंची होती थी, वो गर्व के अंदर उनके नाम होते थे। तो लिहाजा मुजद्दिद आम तौर पे उसकी खिदमात की वुसअत और उसकी बुलंदी और उलू इतना होता है कि फिर ही उसके बारे में लोग कहते हैं कि इसने तजदीदी काम किया या मुजद्दिद है।
आम लोगों की एक मिथ होती है कि दिमाग में बना हुआ होता है, जैसे कोई इज्तिमा में आता है तो मुजद्दिद दीन मिल्लत इस तरह के अलकाबात भी दिए जाते हैं, तो अक्सर दिमाग में जो आम लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि यार मुजद्दिद चाहे तो यार बारिश रोक दे, मुजद्दिद चाहे तो इस तरह की चीजें हैं, मुजद्दिद चाहे तो बारिश बरसा दे, वो दुआ करे तो बारिश हो जाती है, मुजद्दिद चाहे तो जो है किसी को देखे तो वो गुनाहगार है तो वो नेक बन जाएगा अगले दिन से, तो इस तरह की ये चीजें हैं कि वाकई ऐसा होता है, और उसकी मतलब जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, उसकी क्या कोई एक डिस्क्रिप्शन होती होगी कि उसको क्या क्या करना होता है और क्या क्या कर रहा होता है कि उसको पता होता है मेरी जिम्मेदारी भी है, और उसकी जिम्मेदारी अगर काउंट करवा दें आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं।
देखिए ये तो बड़ा दिलचस्प मिथ है कि अगर इस तरह का तसव्वुर मुजद्दिद के बारे में हो, जो आपने तसव्वुर बयान किया ना असल में तो ये कुतुब और गौस का है। कुतुब और गौस जो होते हैं ना कि जो उमूर तकवीनिया यानी कायनाती अशिया के अंदर जिन्हें अल्लाह ताला तसर्रुफ का इख्तियार देता है, जैसे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, जैसे बाबा फिर, जैसे दाता साहब, जैसे और बड़े बड़े औलिया किराम,
इनके पास ये राइट्स ये कर सकते थे,
इनके राइट्स यूं कह लें कि अल्लाह ताला ने उनको ये अता फरमाई थी, उनको ये इख्तियार दिया हुआ था। तो ये वो चीज है, मुजद्दिद का ताल्लुक है दीन की खिदमत के साथ, ठीक है, क्योंकि हदीस मुबारक के अल्फाज क्या थे, मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो उम्मत के लिए उम्मत के दीन को बिल्कुल नया करके पेश कर देगा। तो लिहाजा मुजद्दिद के कामों की जो असल फील्ड है वो है दीन की खिदमत। बाकी ये जो दूसरी चीजें हैं ना कि वो दुआ करे तो बारिश बरस जाए, या बादलों को इशारा करे तो बरसना शुरू हो जाए, या इशारा करे तो बंद हो जाए, इसका ताल्लुक हकीकत में मुजद्दिद के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक है विलायत के साथ। तो विलायत की जो फील्ड होती है ना, और वो भी विलायत भी फिर दो तरह की होती है, एक विलायत वो है कि जो जिसे विलायत इरशाद कहते हैं कि खिदमत दीन, रुश्दो हिदायत और सलाह फलाह इन मामलात के अंदर विलायत, और एक वो होती है जो तसर्रुफात वाली होती है जिसे असल में तकवीनी उमूर कहा जाता है, फल मुदब्बिरात अमरा जो कुरान में फरमाया जो उस कैटेगरी में आते हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है। तो लिहाजा ये वाला सवाल जो है ना, अब ये आप कुतुब के बारे में या किसी वली के बारे में या गौस के बारे में, ये उनके बारे में तो किया जा सकता है, लेकिन इसका मुजद्दिद के साथ कोई जोड़ नहीं है। तो मुजद्दिद को जो पहचानना है ना, वो आप ये याद रखें, मुजद्दिद नंबर एक बजात खुद एक सालिहीन में से होगा, यानी नेक हस्तियों में से होगा। नंबर दो, इल्मो फजल के अंदर वो मशहूर मारूफ होगा। नंबर तीन, अहले जमाना उसकी तरफ रुजू करेंगे, और सालिहीन और उलमा ये उसकी तरफ जो है ना वो उसकी तरफ जाएंगे कि इससे फैजान मिलता है, इससे फैज मिलता है और इससे फवायद हासिल होते हैं। चौथा, उसकी वजह से दीन का कोई बहुत बड़ा काम होगा। लिहाजा आप इसी डेफिनेशन के अंदर मुजद्दिद को रखे चलेंगे, बकिया वो चीजें हैं उनका ताल्लुक करामात के साथ हो जाता है।
जो बार बार आप जो एक बात कह रहे हैं कि दीन को नया करके पेश कर देना मुजद्दिद का काम होता है, तो क्या ये बिदअत नहीं कहलाएगी?
नहीं, वो दो चीजें होती ना। देखिए, एक ये है कि दीन की एक शय को बदल कर उसकी जगह नई शय ले आए,
ठीक है,
ठीक है, और एक ये है कि दीन की शय में लोगों ने बहुत सारी चीजों को खलत मलत कर दिया और वो उनको खत्म करके जो असल दीन है वो पेश कर दे। ये दोनों में फर्क हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये तो सिंपली आप अपनी चीजों के अतबार से देखें तो भाई, एक तो यह है कि एक मोबाइल को हटा के दूसरा ले आए, भाई ये तो असली चीज हो गया ना। एक ये है कि पहले वाले को जंग लग गया था तो लिहाजा उसकी सफाई करके उसको नया करके पेश कर दिया। तो मुजद्दिद जो है, जो असल अकीदे, असल तरीक़ाकार, असल अमल जो दीन को मतलूब है और जो ज़माना रिसालत से चलता आ रहा है, वो उसी को दोबारा पेश कर देता है। जैसे मसलन आप तसव्वुफ़ को ले लें, तसव्वुफ़ के अंदर क्या है कि चूंकि लोग सूफिया की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, तो ज़माने में जाली सूफी बहुत आ गए, उनको पता था कि दो चार नारे मारने हैं, चीखे मारनी है, लोगों ने आ जाना है, दुआएं, पैसे वैसे, ये वो ऐश मौज मस्ती सब शुरू हो जाएगा। अब मुजद्दिद आके क्या करेगा, वो तसव्वुफ का असल मतलब समझाएगा, वो तसव्वुफ के असल अहताफ और मकासिद और तरीक़ेकार बताएगा। ठीक है, जैसे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने तसव्वुफ को निखार कर इहयाउल उलूम, कीमा सआदत, मिनहाजुल आबिदीन और दीगर किताबों में पेश कर दिया। या ये हुआ कि फिरके आए, मोतजिला फिरका आया, मुर्जिया आया, कदरिया आया, जबरिया फिरका आया। अब इन्होंने कुरान हदीस की तशरीहात को अपनी मर्जी से करके नए नए अकीदे बना दिए। अब उन्होंने नए नए अकीदे बना दिए, तो अब क्या हुआ कि अब इमाम अबुल हसन अशरी, इमाम अबू मंसूर मातूरीदी, अब ये आए तो इन्होंने जो असल इस्लाम के अकायद थे उनको दलाइल से बयान कर दिया, और जो दूसरों ने बयान किए थे उनकी तरदीद जो है वो पूरे दलाइल के साथ कर दी, तो असल अकीदे को उनके सामने बयान कर दी। तो लिहाजा कोई इल्म की फील्ड में, कोई अमल की फील्ड में, कोई अकीदे की फील्ड में बयान करता है, तो ये है सारा मुजद्दिदीन का तरीक़ेकार।
ठीक, सर मेरा मौजूद से हटके एक सवाल है, अभी जो असलम मैंने सवाल किया था उसी से मुतालिक, कि आजकल के लोग जो ना, जो भी मजहबी बंदा होता है उससे ये तवक्को रखते हैं कि यानी मशहूर हो कि वो वली हो, तो वो ये तवक्को रखते हैं कि करामत दिखाए कोई, कि इससे करामत का जहूर हो, तो क्या विलायत के लिए करामत का होना ज़रूरी है, इसके हवाले से थोड़ा आप हमें बता दीजिए।
हाँ, ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि वली के लिए करामत का होना ज़रूरी लोग समझते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वली की जो तारीफ है ना, जो डेफिनेशन उलमा ने बयान की है, उसमें करामत का तज़किरा नहीं है। उसमें क्या है, उसका अकीदा ठीक हो, इबादात पर कारबंद हो, शरीयत पर अमल करने वाला हो, गुनाहों से बुराइयों से बचने वाला हो, और अल्लाह ताला की मारिफत रखता हो। बुनियादी बुनियादी ये चीज़ें हैं जो वली की डेफिनेशन में। करामात जो हैं वो अल्लाह ताला किसी को अता फरमाता है, किसी को अता नहीं फरमाता। एक है करामत ये कि वो अल्लाह का दोस्त है, ये भी करामत है। ठीक, ये तो वली को मिली मिली, लेकिन एक वो है कि जो जिसे हम ये कहते हैं कि यहाँ बैठे बैठे वो दूर की खबर दे दे, या दूर से कोई उसको पुकारे वो उसकी मदद कर दे, या जैसे ही हाथ उठाए बारिश बरसना शुरू हो जाए, या इस तरह की जिन्हें खिलाफ आदत चीज़ें कहा जाता है कि ज़ाहिरन ऐसा होता नहीं है लेकिन वो कर देता है। यहाँ बैठा बैठा अभी कदम उठाए तो बगदाद शरीफ पहुँच जाए, यहाँ से कदम उठाए लाहौर पहुँच गया। ये वाली चीज़ें जो करामात कहलाती हैं, ये वली के लिए होना ज़रूरी नहीं है। वली का अकीदा दुरुस्त होना, पाबंद शरा होना, गुनाहों से उसका बचते रहना, इज्तनाब उसकी मिजाज में दाखिल होना, और खुदा से उसका एक गहरा ताल्लुक होना, इस एतबार से उसका दिल याद खुदा से आबाद रहता है। ये विलायत इस तरह के मफाहीम का नाम है, करामात उसके लिए जरूरी नहीं।
अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मुज्तहिद, तो सबसे पहले तो हमें बता दें कि मुज्तहिद कौन होता है, और क्या मुज्तहिद अफजल है या मुजद्दिद, इन दोनों में सबसे बड़ा मर्तबा किसका होता है, ये भी हमें बता दीजिए।
मुज्तहिद एक टर्म है पूरी
जी,
ठीक ना, मुजद्दिद भी टर्मिनोलॉजी है कि वो भी हदीस मुबारक में आई है, लेकिन मुज्तहिद तो यूं कह लें कि कसीरुल इस्तेमाल और बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होने वाली है। मुज्तहिद बेसिकली कहते हैं इल्मी एतबार से उस इंतहाई आला मकाम को कि जिस पे फाइज आदमी कुरान और हदीस से मसाइल अख्ज करता है और दकीक से दकीक और पेचीदा से पेचीदा मसाइल को भी वो इस्तिदलाल और इस्तिंबात और इस्तिखराज के जरिए हासिल करता है।
इस्तिदलाल मतलब किताबों से निकालना,
यानी कि ये होता ये है ना कि हर शय सीधी सीधी नहीं लिखी होती कि ये कर लो ये ना करो, कोई शय इस तरह सराहतन नहीं लिखी हुई, लेकिन कोई ऐसा उसूल दिया हुआ है कि जिसकी रोशनी में वो मसला निकाला जा सकता है। लेकिन बाद अवकात इसमें पेचीदगी आ जाती है कि एक उसूल दिया उससे एक मसला निकल रहा है, लेकिन दूसरे उसूल से उसके बरक्स निकल रहा है। अब क्या करें, अब फैसला कैसे करें कि भाई यहां पर ये वाला मसला लेना है या वो वाला मसला लेना है। इन उसूलों को आपस में एक दूसरे पे तरजीह देना, तत्बीक, मुआफकत पैदा करना, ये मुज्तहिद का काम होता है। फिर मुज्तहिद के मरतबे होते हैं, मुज्तहिद फिल शरा है जिसे मुज्तहिद मुतलक कहते हैं, मुज्तहिद फिल मजहब होता है, फिर उस मुज्तहिद फिल मसाइल होता है। तो ये दर्जात हैं, लेकिन उमूमी तौर पे जब मुज्तहिद का हम लफ्ज बोलते हैं ना, तो इसे आम तौर पे जो आला दर्जे का मुज्तहिद मुतलक है, जैसे इमाम शाफी, इमाम मालिक, ये वगैरह मुराद होते हैं। तो ये वो हैं जिन्होंने कुरान और ज़खीरा अहादीस और अकवाल सलफ सालहीन को सामने रख के हजारों लाखों मसाइल मुरतब किए और उन मसाइल को मुदवन करके उम्मत के सामने पेश किया। तो जो इनके काम का वॉल्यूम है ना
जी,
वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। अच्छा, अब रहा ये बात कि मुज्तहिद और मुजद्दिद में कौन अफजल है। तो देखिए, इनमें बेसिकली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो यूं है, हर मुज्तहिद के जो बेसिक काम है ना, जो उसने काम किए, वो इतने बड़े तो हैं कि वो मुजद्दिद से भी बड़े होते हैं। मुज्तहिद के काम उसूली तौर पर मुजद्दिद से बड़े होते हैं, क्योंकि मुज्तहिद तो पूरी शरीयत के एतबार से काम करता है ना। अब ये है कि फर्क कहां पर आ जाता है, अब अगर उसे वो जमाना भी मिल गया जो एक सदी का आखिरी दूसरी का पहला है, तो वो मुज्तहिद भी है मुजद्दिद भी है। और अगर उसे वो जमाना नहीं मिला तो वो मुज्तहिद तो है लेकिन मुजद्दिद नहीं है। अब जैसे दूसरी सदी के मुजद्दिद इमाम शाफई हैं, इमाम शाफई को जमाना भी वो वाला मिल गया और वो मुज्तहिद भी थे। इमाम आजम इज्तिहाद में इमाम शाफई से बड़े, लेकिन चूंकि वो जमाना नहीं मिला, लिया मुजद्दिद का लफ्ज नहीं बोलते हम। तो इसका ताल्लुक यूं कह लें कि डेफिनेशन के साथ है, अफजलियत के साथ इसका ताल्लुक नहीं। बज़ाहिर अगर आप देखें तो मुज्तहिद ही का मर्तबा बड़ा है, क्योंकि मुज्तहिद के काम और ये जो है ना, ये ज्यादा बड़े काम है। अच्छा, लेकिन यहां पर एक मैं दूसरी एक बड़ी तफसीली बहस है, उसका मैं खुलासा सा आपको अर्ज कर देता हूँ कि जो होता है ना कि हम कहते हैं कि यार ये अफजल है या वो अफजल
जी, है। ये क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में।
ठीक है, देखिए, अफजलियत का मामला जो है ये मामला है गैब का। क्यों? इसलिए कि लफ्ज हैं दो, एक है फजीलत, एक है अफजलियत। फजीलत ये है कि किसी में कोई खूबी है, कमाल है। अफजलियत ये है कि इसमें ये खूबी उससे ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, फिर अफजलियत ये दो तरह की होती है। एक होती है अफजलियत जुजी, यानी कि एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, एक स्पेसिफिक चीज के अंदर, कि भाई ये बड़ा आलिम है या ये बड़ा आलिम है, तो हम बोलेंगे कि ये बड़ा आलिम है। ठीक है, हमसे कहा जाए कि भाई आला हजरत बड़े आलिम थे या सदर शरिया मौलाना अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम थे, तो हम बोलेंगे जी आला हजरत बड़े आलिम थे। ये है कमाले इल्मी के अंदर एक का दूसरे से अफजल होना। एक होती है अफजलियत मुतलका। मुतलका का मतलब ये है कि खुदा की बारगाह में इसका मर्तबा ज्यादा या उसका मर्तबा ज्यादा है। असल अफजलियत इसको कहते हैं कि खुदा की बारगाह में इस बंदे का मर्तबा और कुर्ब ज्यादा है या उसका मर्तबा और कुर्ब ज्यादा है। ये तो खुदा जानता है कि उसकी बारगाह में किसका मर्तबा ज्यादा है। अब अगर खुदा ही बता दे कुरान के जरिए, अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए, या इस तरह के दलाइल के जरिए कि जिससे उम्मत ये समझे कि भाई इन आयात व अहादीस से ये समझ आ रहा है, तो ये गोया खुदा के बताने ही से मामला हो गया, लिहाजा वहां तो हम फैसला कर सकते हैं। जैसे सारे नबियों में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे नबी सबसे अफजल है। ठीक है, कुरान में है कि वरफा बअदहुम दराजात, ये कुरान के अंदर है, और भी आयात है जिनसे उलमा ने इस्तदलाल किया। अच्छा, सहाबा की बात करते हैं तो हमें अहदीस के दलाइल से ये पता चल गया, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन से पता चल गया कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफसर सिद्दीक अकबर, फिर उमर फारूक है, फिर उस्मान गनी, फिर हजरत अली मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम। अब ये वो तकसीम कार है या वो तरजीह है कि जो हमें खुद हदीसों से ही पता चले। अच्छा, इससे नीचे एक और सूरत हो सकती है कि मसलन कोई वली खुद ये दावा करे कि अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा दिया और बकिया उसके दावे को तस्लीम कर ले। जैसे सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, आपने फरमाया कदम ही हादी ही अला रकबती कुल्ली वली जिल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे, और इस पर सारे वलियों ने कहा बिल्कुल। तो अब उन्होंने दावा किया और ये अपनी तरफ से नहीं किया, उनको खुदा ने बताया और इजाजत दी ये दावा करने की, तो उन्होंने दावा किया। بلکہ حکم دیا کہ اعلان کرو، تو انہوں نے اعلان کیا اور بقیہ سب کو پتا تھا، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب امت کے ولیوں نے جب مان لیا نا، تو اب ہم مان لیں گے کہ غوث پاک کا مرتبہ بقیہ ولیوں سے بلند ہے۔ لیکن اس سے نیچے کی جو ترتیب ہے اور نیچے کی جو صورتیں ہیں، اس میں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مرتبہ اس سے بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے چند کمالات اس کے جانتے ہیں، چند کمالات اس کے جانتے ہیں، لیکن کون سے؟ ظاہری۔ باطنی کمالات کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میری نظر میں مثال کے طور پہ آپ دونوں حضرات، اگر آپ دونوں مثلا عالم ہوں تو میں سمجھوں گا کہ بھئی دونوں عالم ہیں، لیکن آپ دونوں کے اندر کی کیفیت کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر میں ظاہری اعتبار سے دیکھوں، یہ عالم ہیں، آپ عالم نہیں ہیں۔ اب ظاہری اعتبار سے دیکھوں تو جو عالم ہے وہ دوسرے سے افضل ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ پہ توکل ایسا ہے کہ آپ کا وہ ایک وصف جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ان سے زیادہ مقبول بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دل کے اعمال ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ قوت القلوب میں علامہ امام محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور کیا خوبصورت جملہ بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ قلبی اعمال کا ایک ذرہ، قلبی اعمال ہے توکل، اللہ سے محبت، اس سے ملاقات کا شوق، اس کے دیدار کا شوق، اور اس کے حکم پہ راضی رہنا، اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا، جس حال میں مولا رکھے خوش رہنا، یہ قلبی اعمال کہلاتے ہیں۔ تو امام محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلبی اعمال کا ایک ذرہ ظاہری اعمال کے پہاڑوں سے بھی زیادہ قیمتی۔
ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ،
بڑی۔ اب ایک طرف ایک بندے کے ظاہری اعمال ڈھیروں ڈھیروں،
اب ٹوٹلی اگر دیکھیں تو بندے کے اندر کیا ہے،
اندر کیا
ہے، وہ اس پر بات آتی ہے کہ افضلیت جو ہے وہاں سے جو ہے وہ
ہم اپنے نقطۂ نظر سے یہ کہہ لیں گے یار مجھے یہ بہتر لگتا ہے
جی،
لیکن حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو ہے چار مجتہد، آئمہ مجتہدین، ان کے مرتبے کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کا مرتبہ باقی سارے ولیوں سے بلند ہے، لیکن مجتہد صرف یہی نہیں ہے، اور بھی ہیں بہت سارے۔ ٹھیک، اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جو مجتہد نہیں ہے اور وہ کچھ اور ہے اور اس کا مرتبہ ان سے زیادہ۔ مثال کے طور پہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ظاہری علوم والے، ہو سکتا ہے بڑے بڑے علماء موجود ہو، وہ کتابیں لکھنے میں، وہ علم کی باتیں کرنے میں بہت کچھ ہوں گے، اور ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایک جملہ بھی ان ہستیوں سے منقول نہ ہو، بابا فرید سے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مرتبہ کس کا بلند ہوگا؟ ولیوں کا کہنا یہ کہ جو مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا، جو مرتبہ خواجہ غریب نواز کا ہے، تو علماء تو ان کی چوکھٹ پہ جانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کچھ چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اکثریت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو یوں ہمارے لیے یہ تقابل کرنا مشکل ہوتا ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجدد ایک شخص کا ہونا نہیں بلکہ مجموعی عوام کا دین پر عمل کرنے کا نام ہے۔
یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن شاید اس کی تعبیر یوں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ کیا مجدد فرد معین ایک شخص ہوتا ہے یا ایک جماعت ہوتی ہے؟
جی
ٹھیک ہے، اب اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ تین اس کے اندر جو ہے نا وہ معنی لے سکتے ہیں آپ۔ ایک ہے ایک ہی صدی میں ایک ہی بندہ مجدد ہے،
صحیح،
ٹھیک ہے۔ دوسری صدی میں صرف امام شافعی مثلا۔ ایک یہ ہے کہ ایک صدی میں معین فرد ہی مجدد ہے، لیکن وہ ایک نہیں ہے، وہ دو چار پانچ سات ہو سکتے ہیں۔ جیسے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بے مجدد تھے، لیکن آپ ہی کے زمانے میں شیخ عبد الحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی مجدد تھے، تو اب ایک ہی صدی ہے تو مجدد، لیکن دونوں فرد ہیں،
صحیح،
جماعت نہیں ہے،
جماعت
وہ ایک فرد ہے، وہ ایک فرد ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مجدد کوئی ایک فرد معین ہو یہ ضروری نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے،
जो मिलकर दीन का ऐसा काम कर रही है कि जो बहुत बड़ा काम है। जैसे हम ये कहें कि किसी जमाने में कि जब दीन के ऊपर जो है ना वो कुफार ने हमले किए और जंगे मुसल्लत कर दी, अब उनके मुकाबले में जो मुसलमान फौज खड़ी हुई और जिसने उनको जो है ना वो तबाह बर्बाद किया और इस्लामी मुल्कों की हिफाजत की, तो ये पूरा लश्करी मुजद्दिद क्योंकि इस पूरे लश्कर ने दीन की हिफाजत की। या ये है कि किसी जमाने में फुकहाए किराम की एक जमात है या मुहद्दिसीन की एक जमात है, या फुकाह की जमात भी है, मुहद्दिसीन की भी है और अकीदे के जो माहिरीन है उनकी भी है, और ये सब अपनी अपनी जगह दीन का काम कर रहे हैं। तो अब इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि ये जैद अमर बकर खालिद फलां फलां मुजद्दिद, ये कहा जाएगा कि इस पूरी जमात मिन हैसु जमात, यानी कि ऐसा ग्रुप के ये मुजद्दिद है और इसने दीन की तजदीद का काम किया है। तो ये बेसिकली होता है कि जमात ही मुजद्दिद हो सकती है, ये भी उलमा का कौल है, और फर्द मौजन मुजद्दिद है ये भी है, और उलमा का ये कौल भी है और उलमा ने इसके एतबार से तायीन भी की है।
एक सवाल ये बता दें कि शेख अहमद सरहंदी को अल्फ़े सानी का लकब क्यों दिया जाता है, मुजद्दिद अल्फ़े सानी का, ये इनको क्यों कहा जाता है?
हाँ, ये एक डिफरेंट वर्ड आ जाता है मुजद्दिद के साथ कि मुजद्दिद अल्फ़े सानी। तो देखें, अल्फ का मतलब है 1000, सानी का मतलब है दूसरा, अल्फ़े सानी का मतलब हुआ दूसरा 1000। अब ये क्यों कहा जाता है मुजद्दिद अल्फ़े सानी रहमतुल्लाह अलैह? जब जिस वक्त आप तशरीफ फरमा थे और आप फितनों का कला कमा कर रहे थे और आपने दीन की तजदीद का काम किया, तो जो हिजरी साल हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिजरत से शुरू होते हैं उसका 1000 मुकम्मल हो चुका था और दूसरा 1000 शुरू हो चुका था। जैसे हम दूसरे 1000 में चल रहे हैं,
सही,
ठीक है, तो दूसरा 1000 शुरू हुआ था और आप इस सदी के मुजद्दिद थे, यानी कि मुजद्दिद तो अपनी सदी के थे यार, लेकिन दूसरा 1000 तब से शुरू हुआ था, तो लिहाजा आपको फिर टाइटल ये दे दिया गया मुजद्दिद अल्फे सानी, यानी दूसरे 1000 जो शुरू हुआ ये उसके शुरू के मुजद्दिद थे, तो इस एतबार से आपको मुजद्दिद अल्फे सानी कहा
जाता है। सर, इनके खास कोई कारनामे ऐसे नहीं थे कि जिनकी वजह से इनको खास ये नाम दिया गया कि इन्होंने अपने मुखालिफ के लिए किस तरह से इल्मे दलायल दिए या काम किया, कहीं उसकी वजह से तो नहीं था?
कारनामे ऐसे थे इसलिए अल्फ़े सानी का नाम दे दिया, तो ये कोई ऐसी वो बात नहीं है। जैसे मैंने वो अर्ज किया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद हैं
जी,
तो उनके कारनामे आज तक चल रहे ना, फिक्र शाफी आज तक चल रही है
जी, जी।
इसी तरह इमाम अशरी, इमाम मातुरिदी, उनकी किताबें और अकीदे का तहफ़ आज तक चलता आ रहा है, इलामा सूती की किताबें भी चलती आ रही है, इलामा सखावी की भी है, इमाम गजाली की भी है, इमाम राजी की भी है। तो मुजद्दिद का जो कारनामा होता है मोस्टली वो सदियों चलता है, तो लिहाजा इस वजह से अल्फ़े सानी का ऐसे ताल्लुक नहीं, वो उसकी तौजीह और उसकी वजह वही है जो मैंने अर्ज की है कि उन्होंने जिस वक्त तजदीदी काम किया तो दूसरा 1000 शुरू हुआ था, दूसरा 1000 शुरू हुआ था, इस वजह से ये कहा जाता है। बाकी जो आपके कारनामे हैं उसकी एक वैरायटी है और मेरे ख्याल में तो वो बजाते खुद एक पूरा वो है, यानी कि चैप्टर है जिस पर हम कलाम करें कि आपने जो अकबर बादशाह ने नया दीन ईजाद किया था, दीन अकबरी, आपने उसका रद्द किया था, फिर जो और सूफियों की जालसाजियां उस जमाने में पैदा हुई थी आपने उनकी इस्लाह फरमाई थी, फिर जो शरीयत को शरीयत की अहमियत को कम किया जा रहा था आपने शरीयत की अहमियत और सुन्नत की अहमियत आप उसको बहुत बड़े पैमाने पर उजागर किया, तो मेन ये है। फिर उसके साथ जो नक्शबंदी सिलसिले को आपने एक नई यूं कह ले कि उरूज दिया और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में नक्शबंदी सिलसिला गोया आपकी तरफ ही मंसूब हो गया, नक्शबंदी मुजद्दिदी आगे सिलसिला चल पड़ा, फिर वो पूरे का पूरा आगे एक कारनामा है। तो यूं कह लें कि ये है मजमूई तौर पर कि जिसकी वजह से मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह को मुजद्दिद कहा जाता है।
आज मैं जब यहाँ आपके पास आया था तो उससे पहले मेरे दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन थी चीज़ें थी कि मैं मुजद्दिद जो है वो क्लियर नहीं था मेरे दिमाग में, तो आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ और बहुत सारे सवाल किए और यकीनन कुछ मेरे पास लिखे हुए सवाल थे और कुछ मेरे अपने जो आपके जवाब से मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहे थे अवामी तौर पर इस तरह की चीज़ें तो मिस खबर है इसमें इस तरह की मिस भी होगी, मगर आज क्लियर हो गया कि मुजद्दिद का कॉन्सेप्ट क्या होता है मुज्तहिद का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सूफी जो होते हैं, वली जो होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक अलग 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 चीज़ें हैं, ये समझ में आ गया आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आपसे एक और सिलसिले के लिए आएंगे, और उसमें भी इंशाल्लाह आपसे कुछ सवाल होंगे, तो उस पर भी इंशाल्लाह आपसे वक्त लेंगे, और अगर आप वक्त अता फरमाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ी नवाजिश होगी
इंशाल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया।
इल्म का मुझको शौक था कर खुदा, इल्म नाफे मिले अज पाए उलमा, इल्म का मुझको शौक था कर खुदा।